माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं भक्ष्णं कृतरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले दो दिनों में हम भगवान जगन्नाथ की लीलाओं की चर्चा करते आए हैं। विशेष रूप से मायापुर के पास में जो राजापुर स्थान है, वहां जो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह स्थापित हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। वैसे साधारणतः जैसे कल हम बता रहे थे कि भगवान के अर्चा विग्रह का प्राकट्य भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए होता है, नास्तिकों के लिए नहीं। इसलिए साधारण भक्त भी ये प्रेम का आदान प्रदान भगवान के विग्रह से कर सकते हैं और करते हैं। और हम में से हर एक का कोई ना कोई अनुभव, छोटा मोटा क्यों ना हो, अवश्य हुआ होगा राधा गोकुलानंद से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से, गौर निताई से। हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम बहुत भावुक ना हो और अपने कल्पना को तेजी से भगा के कुछ सोचने न लगे कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं, वो अलग बात है। परंतु कभी कभी प्रत्यक्ष छोटे छोटे अनुभव हमारे जीवन में विग्रह के साथ होते हैं। परंतु ऐसे अनुभव जिसमें कि भगवान हमसे बात करते हैं या भगवान ऐसे कोई बहुत ही विशेष चीज करते हैं, प्रत्यक्ष कुछ प्रकट हो जाते हैं, ऐसे अनुभव अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत शुद्ध भक्तों के लिए होते हैं। जैसे श्री रंगम में हम देखते हैं कि भगवान के विग्रह तो पुजारी से बात करते थे, जब पुजारी प्रश्न करते थे तो उत्तर भी देते थे, वार्तालाप करते थे जैसे कि हम आपस में बातचीत करते हैं। साधारण भक्तों के साथ में ये साधारणतः नहीं होता है। परंतु जगन्नाथ भगवान इतने क्रियाशील हैं, साधारण भक्तों के हृदय में भी, स्वप्न में भी प्रकट होते हैं, तरह तरह के वो चमत्कार भक्तों के जीवन में दिखाते हैं। भगवान के किसी भी विग्रह से ये संभव है और होता है। परंतु ये जो भगवान जगन्नाथ हैं, विशेष रूप से बहुत क्रियाशील हैं, और राजापुर वाले तो और भी। तो दो दिनों में इस मंदिर के इतिहास का वर्णन हो चुका है। लगभग 1978 में इस्कॉन के हवाले ये मंदिर आ गया, जब उस स्थान के जो मालिक थे फटिक चक्रवर्ती चैटर्जी, उन्होंने उनके स्वप्न में जगन्नाथ आए कि आपको ये मंदिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को देना है, तो उन्होंने दे दिया। और कल की चर्चा यहाँ समाप्त हुई थी कि उस समय परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज ने ये आदेश दिया था कि हमें वो दान तो दे रहे हैं, परंतु विग्रहों की पूरी तरह से सेवा हमें तब तक नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक कि जितने भी जमीन के मालिक हैं वो सब कागज पे सही न करें, क्योंकि यदि ऐसे हो कि थोड़े लोग न माने, फिर इसको उनको जमीन न मिले, हम पूजा शुरू करें फिर से बंद करना पड़े, वो सब ठीक नहीं रहेगा। परंतु उनको ये पता नहीं था कि एक इस्कॉन के पुजारी ने वहां सेवा करना शुरू कर दिया था। और जब ऐसे उनको पता चला कि महाराज जी ने ऐसे आदेश दिया है, तो उन्होंने भोग चढ़ाना बंद कर दिया। और उस रात को पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखाई पड़े, जो खेत में से भागते हुए जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला, हम मायापुर चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन में जा रहे हैं, वहां अच्छा भोग मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, यहाँ कुछ नहीं खिला रहे हो तुम हमें। फिर जब ये महाराज ने सुना तो तुरंत उन्होंने कह दिया, अरे हमको पता नहीं था ऐसे, चलो चलो भोग चालू करो, चालू करो। फिर भोग फिर से शुरू हो गया, भगवान संतुष्ट हुए। तो जब से ये हमारे संस्था के हवाले आ गया ये मंदिर, उसके बाद भी बहुत छोटे मोटे ऐसे लीलाएं होती रही हैं, और भक्त अपने अनुभव जननिवास प्रभु या पंकजांगरी प्रभु जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनको बताते आए हैं। तो ये जो जो जुड़वे भाई हैं हमारे बहुत प्रसिद्ध संस्था के, जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु, आशा करते हैं कि जब हम यात्रा के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें हम बुलाएंगे हम सबको बताने के लिए राजापुर की कहानियाँ। तो भक्त लोग जाके उनसे बताते थे। तो ऐसे थोड़ी घटनाएं हैं, ऐसी जो छोटी छोटी लीलाएं हैं जो अभी हम आपको सुनाने चाहते हैं। एक विदेशी भक्त थे, वो जगन्नाथ मंदिर राजापुर में आए थे स्नान यात्रा के उत्सव के लिए। और आपको पता है कि स्नान यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह के ऊपर खूब पानी से अभिषेक किया जाता है, केवल साल में एक बार ऐसे होता है। बाकी जितने भी दिन हैं साल के उसमें केवल आईने से या दर्पण से स्नान किया जाता है। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में प्रथा है कि स्नान यात्रा के बाद दो हफ्ते लगभग भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। इसको अनवसर का समय कहते हैं, जब भगवान किसी को दिखाई नहीं देते हैं, केवल उनके जो प्रिय दैत सेवक होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं और उनको तरह तरह के जड़ी बूटियां, फल के रस आदि सब खिलाते पिलाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को उस समय थोड़ा बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, थोड़े बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए खास उनको औषधियां आदि दिए जाते हैं। अब भगवान कैसे बीमार पड़ सकते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं, भगवान कैसे बीमार पड़ सकते हैं, ये भगवान की लीला है। अपनी लीला में भगवान ऐसे कई चीजें करते हैं जो कि साधारण मनुष्यों की तरह है। तो खैर ये विदेशी भक्त वहां राजापुर में गए थे स्नान यात्रा के उत्सव में, उन्होंने आनंद लिया, फिर वहां रात को रुके ताकि अगले दिन भी वहां दर्शन हो। तो शाम के समय जब दर्शन बंद करने का समय आ गया, तो सेवा के लिए कुछ मंदिर के ऑल्टर के पास में ही कहीं थे, सब लोग चले गए थे। अचानक उन्होंने अंदर से छींकने की आवाज सुनाई दी उनको, जैसे सर्दी होता है छींकते हैं ना, तो उन्होंने सोचा ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने सोचा कुछ कहीं कुछ गिर गया होगा, कुछ और कहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ मंदिर में तो कोई है नहीं। फिर वो पास में गए और फिर से उनको दोबारा बहुत स्पष्ट छींकने की आवाज आई अंदर से, और अंदर तो कोई व्यक्ति थे नहीं, होंगे भी तो कोई मच्छर कीड़े, वो तो छींकते नहीं हैं। तो फिर उनको पता चला कि वास्तव में भगवान जगन्नाथ को सर्दी होती है स्नान यात्रा के बाद में। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग कहते हैं कि ऐसे होता है, वास्तव में भगवान जगन्नाथ को सर्दी हो गई थी। तो ये भक्त ने अपने साक्षात्कार को बताया। जो वहां पास में इलाका है उसमें मुसलमान लोग बहुत रहते हैं, तो मुसलमानों का जो अनुभव हुआ वो दो तीन घटना ऐसे कल परसों हमने बताई। और एक घटना ऐसे हुई कि वहां एक लड़की थी जो मुसलमान परिवार की थी, और उसकी आंखों में कोई समस्या हो गई और वो देख नहीं पा रही थी। तो उसके माता पिता उसको डॉक्टर के पास ले गए, वहां के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अभी कोई उपाय नहीं है इसके लिए, ये अभी देख नहीं पाएगी। तो ये बहुत हताश हो गए, निराश हो गए। तो वो जानते थे वहां तो उस इलाके में जगन्नाथ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब एक ही उपाय रहा है, जब और कोई चारा नहीं है तो फिर वो ऐसे चीज करते हैं जो साधारणता वो नहीं करते। अब मुसलमान धर्म के अनुसार वो विग्रह को नहीं मानते हैं, इसको प्रतिमा या पुतली मानते हैं। तो फिर भी मरता क्या न करता, जब और कोई चारा नहीं रहता है, जो भी चीज है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो आए, उन्होंने सुना था कि जगन्नाथ ये इनके हैं, इनके भगवान जगन्नाथ हैं, ये बहुत चमत्कार करते हैं, हो सकता है हमारे बेटे के लिए भी कुछ करें। तो वो आए वहां, किसी भक्त से बात की, पुजारी ने कहा रोज चरणामृत लेना आप। तो लगातार 7 दिन रोज चरणामृत लिया, और 7 दिन के बाद वो उस लड़की को अपनी दृष्टि फिर से आ गई। अब ये सब वहां के भक्त लोग बताते हैं, वो जो मुसलमान लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि ये चमत्कार, आज भी वो लड़की बूढ़ी हो गई है और वो भी देख पा रही है। बुढ़ापे के कारण अवश्य कुछ फर्क तो पड़ा है, परंतु देख पा रही है। तो ऐसे न केवल जगन्नाथ भक्तों के साथ ऐसे लीला करते हैं, परंतु जिनके हृदय में कोई विश्वास था नहीं पहले से, उनके प्रति भी करते हैं। अभी ऐसे कैसे संभव है? हो सकता है ये जो आज मुसलमान परिवार में है, पिछले जन्म में कहीं कुछ उनका संबंध भगवान जगन्नाथ से हुआ होगा, किसी कारणवश अपने कर्मों के कारण मुसलमान जन्म परिवार में जन्म मिला, लेकिन कोई ना कोई सुकृति हुई होगी पिछले जन्म से। वैसे हो सकता है 2-3 साल पहले मैंने जो मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो जगन्नाथ की सेवा की उसके बारे में भी चर्चा की होगी। तो औरंगजेब जैसे राजा को भी ऐसे अवसर मिला, जो इतना दुष्ट था, जिसने इतना कुछ किया वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिरों के प्रति, और इतने अत्याचार किया, लेकिन फिर भी ऐसे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा कुछ उसे मिली। खैर वो तो एक और समय की कथा है। तो कुछ तो हुआ होगा पिछले जन्म में, कहीं से तो इन्होंने संस्कार कुछ लाए होंगे, कहीं कुछ छोटा मोटा कुछ सेवा किया होगा। हो सकता है किसी रथ यात्रा में जाते हुए जगन्नाथ का दर्शन किया होगा, या कहीं कुछ महाप्रसाद लिया होगा, कुछ तो किया होगा। और खास करके फिर भगवान जगन्नाथ दिखाना चाहते हैं कि मैं सबका नाथ हूं, मुसलमानों का भी नाथ हूं, हिंदुओं का नाथ हूं, सबका नाथ हूं, सारे जगत का नाथ मैं हूं। मैं भेद नहीं करता कि किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, ऐसे भेद नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे संस्था में भी कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो भक्ति के रास्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, भारत में भी जन्म नहीं लिया, विदेश में ऐसे परिवारों में जन्म लिया जहां बचपन से ही परिवार में पाप चलते थे, मांसाहार होता था, और वो लोग घर में शराब पीते थे। ऐसे घरों में ये पैदा हुए, लेकिन आगे चल के देखिए कैसे भक्ति में आगे बढ़े और आज कहां पहुंचे हैं ये।
तो हालांकि जन्म का महत्व होता है, परंतु जन्म ही सर्वस्व नहीं है। तो ऐसे प्रतीत होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझकर इन आत्माओं को ऐसे स्थानों में, देशों में और ऐसे परिवारों में जन्म दिलवा दिया, जिससे कि सारे दुनिया को पता चले कि भगवान के भक्ति के रास्ते में देश काल आदि का कोई महत्व नहीं होता, जाति भेद, देश भेद इत्यादि ये सब नहीं होता है। तो भगवान जगन्नाथ ने भी ऐसे कुछ योजना की होगी कि वो ऐसे जगह में गए हैं जहां आगे चल के कितने सारे मुसलमान लोग पास में रहते हैं और उनको भी श्रद्धा है भगवान जगन्नाथ में। तो खैर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, केवल दो तीन सुना रहे हैं, उनमें से हो सकता है थोड़ी घटनाएं ऐसे बढ़ा चढ़ा के किसी ने कह दिया होगा, हो सकता है, परंतु कई ऐसी घटनाएं हैं जो बिल्कुल सही है। आगे भी ऐसे एक कथा भक्त सुनाते हैं कि कोई छात्र आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत सुना था। तो वो शाम के समय आए जब अंधकार होने जा रहा था, और उस समय बस संस्था के हाथ में मंदिर आया ही था और अच्छा मंदिर नहीं बना हुआ था, पुराना मंदिर था, बिजली भी नहीं थी, तो वहां केवल दीप से ही सब कुछ चलता था, एक दिया भगवान के सामने रखा जाता था। तो धीरे धीरे से इस्कॉन ने मंदिर बनाया वहां, लेकिन उसके इसके लिए समय लगा। तो ये जब विद्यार्थी आए थे तो जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से दीप से वो क्या उनको दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो बहुत निराश हो गए कि इतने दूर से हम आए और ठीक से भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं कर पाए। तो वो जा रहे थे, फिर उनको पुजारी ने कहा ठहरो मैं आरती कर रहा हूं, तो आरती के प्रकाश से हो सकता है दर्शन हो सके। फिर अगरबत्ती अर्पण की, अगरबत्ती के बाद में फिर पंच प्रदीप जानते ना, जो घी के लैंप हम अर्पण करते हैं, तो वो अर्पण करने लगे। उससे थोड़ी बहुत रोशनी बढ़ गई, बट इतना नहीं कि वो स्पष्ट अच्छी तरह से तीनों विग्रहों का दर्शन कर सके, थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उस समय जब पुजारी ने वो पंच प्रदीप अर्पण किया और बगल में रख दिया, तो उस समय अचानक वो पंच प्रदीप की जो अग्नि है, जो चिंगारे, वो इतने बढ़ गए, लगभग 9-10 इंच ऊपर वो आग जलने लगी। और अचानक ऐसे लगा कि बिल्कुल रोशनी भर गई सारे वहां पे सामने। फिर सारे विद्यार्थियों ने जी भर के दर्शन ले लिया, वो जो भी है वो 4-5 सेकंड जितने क्षण के लिए वो इतना प्रकाश हो गया, बहुत आनंद से दर्शन लिया और संतुष्ट होकर वो वहां से चले गए कि भगवान जगन्नाथ ने दर्शन के लिए खास हमारे लिए कैसी व्यवस्था की। और ये कोई बड़े विद्वान आदि नहीं थे, सब युवा युवक थे, सब आए थे कहीं से, ज्यादा श्रद्धा भी नहीं हुई होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो थी, इसलिए दर्शन करने आए थे। और जब ठीक से दर्शन नहीं हो पाया था तो निराश होके गए थे। तो भगवान जगन्नाथ को अच्छा नहीं लगा कि ये लोग निराश होके जा रहे हैं, तो मुझे दर्शन देना चाहिए उनको। तो ये सारे उदाहरण हैं, छोटे छोटे चीजें हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन साधारण व्यक्तियों के ऊपर भी भगवान जगन्नाथ कैसे कृपा करते हैं इससे हम सीख सकते हैं। तो और एक घटना ऐसी है कि एक बार एक व्यक्ति जो उसी इलाके में रहता था, उसने सोचा यहां नए मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, तो तरह तरह के पदार्थ वहां पे इकट्ठे हुए थे, खास करके मार्बल जो होता है ना, संगमरमर, मार्बल भी ले आए थे, क्योंकि संगमरमर का मार्बल का मंदिर बनाने जा रहे थे भक्त। तो ये क्या करता था कि मार्बल जो कटे हुए थे, संगमरमर के पत्थर के टुकड़े ऐसे ऐसे यहां वहां पड़े हुए थे, तो हर दिन आके वो एक एक टुकड़ा उठा के चोरी करके ले जाता था। एक साथ में ले जाने से तो दिखाई पड़ेगा, तो एक एक टुकड़ा उठा के ऐसे ऐसे छुपा के चले जाता था। और उस समय इतने लोग भी नहीं थे, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, सुरक्षा के लिए इतने गार्ड वार्ड भी इतने नहीं थे, होता भी था तो एक कहीं वहां है तो यहां चुपके से यहां से चल के चले गए। तो ऐसे वो कर रहा था, तो कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन बलदेव उनके स्वप्न में आए। और बलदेव जगन्नाथ, इनका तरीका ऐसा है, कभी कभी जब दंड देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, छाती पर बैठ जाते हैं, गला पकड़ लेते हैं। इनका स्टाइल ऐसे लगता है होगा, ऐसे ही अक्सर ऐसे ही करते हैं भक्तों के, जब दुष्टों के साथ में ऐसे ही करते हैं। तो उसके वक्षस्थल पर बैठ गए, गला पकड़ लिया, मेरे मंदिर की चोरी की तुमने, ऐसे जबरदस्त डांट सुनाई उसको और कहा कि तुरंत जाके जितने भी चोरी की है संगमरमर की, मार्बल की, लौटा दो। फिर अगले दिन वो बेचारा पूरा बैलगाड़ी भर के मार्बल लेकर आया वहां पर, इतना चोरी कर करके इतने दिनों से रखा था वहां पे, वो आके दे दिया कि भाई आपके ये सफेद आदमी है ना, ये बहुत जबरदस्त है, ये सपने में आए मुझे, ऐसे मेरा गला पकड़ दिया, छाती पे बैठ गया, तो आज से कभी ऐसे नहीं करूंगा। तो खैर, चोरी के मामले में तो जगन्नाथ बलदेव बहुत सतर्क रहते हैं और बहुत ही जल्दी दंड देते हैं। एक बार जब इस्कॉन के हाथ में मंदिर आ गया तो थोड़े भक्त भी पुजारी उनको यहाँ आना था। अब मायापुर से ऊपर नीचे जाना आना संभव नहीं था, तो थोड़े परिवार आके यहाँ पे बस गए, उनको वहां रहने की व्यवस्था की गई पुजारी। तो एक पुजारी थे वहां, तो वो गृहस्थ थे, तो उनका एक छोटा बच्चा था। तो बच्चा एक दिन घर में आया, बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो माँ ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, वो बता नहीं सका, जोर से रो रहा था। जब उसको शांत कराया, कहा कि बताओ हुआ क्या तुमको, फिर जब वो थोड़ा शांत हो गया तो कहने लगा कि मैं मंदिर में गया था और मैंने देखा कि सुभद्रा देवी के लिए एक गहना था, जो कपड़े होते हैं, कपड़े को जगाने के लिए पिन की तरह एक होता है, आभूषण होता है, इसको अंग्रेजी में ब्रूच कहते हैं। तो कपड़े को जोड़ के रखने के लिए, बांध के रखने के लिए वो आभूषण लगा हुआ था। तो बच्चे ने कहा मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मुझे चाहिए ये खेलने के लिए। तो मैं सुबह ऊपर चढ़ा और ऊपर उसको लेने गया और फिर जोर जोर से रोने लगा। अरे बताओ फिर हुआ क्या, मैं कह रही बलदेव है ना, उन्होंने चाटा मार दिया मुझे और मैं गिर पड़ा मंदिर में उधर, ये नहीं लेना तुम्हारे काम की बात नहीं है। तो बच्चे ने आके माँ को ऐसे कह दिया। आजकल तो ये संभव नहीं है, सुरक्षा आदि है, सब चीजें हैं, लेकिन वो शुरुआत के दिन थे और पुराने जमाने में मंदिरों में ऐसे सब नहीं होता था ना, सुरक्षा आदि नहीं होता था। तो खैर, ये बच्चे की लीला के द्वारा हम सुन सकते हैं कि कैसे बच्चों को ज्यादा दंड नहीं दिया, एक थप्पड़ ही काफी था उसके लिए, छोटा सा बच्चा था वो। फिर और एक बार ऐसे, ये भी लीला कई बार होते हैं कि बीमारी से ठीक करना, जैसे वो मुसलमान लड़की की आंखें ठीक कर दी, ऐसे ही वहां जो एक पुजारी थे जगन्नाथ भगवान के, उनके बच्चे को बहुत ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए कोई इलाज नहीं था। तो आज जो पास में हॉस्पिटल था नवद्वीप में या कृष्णनगर, जहीं भी, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो या तो आप उसको घर में ले जाओ या तो फिर कलकत्ता में हॉस्पिटल में ले जाओ। अब कलकत्ता में ले जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वहाँ के हॉस्पिटल आदि में तो खर्च बहुत हो जाता है। तो उसने कहा मैं तो कलकत्ता तो नहीं ले जा सकता, आप यहीं पर रखो इसे, जो होगा सो यही होगा, फिर देखते हैं। तो चाहते तो नहीं थे, लेकिन फिर डॉक्टर मान गए कि ठीक है, बच्चे को वहीं रखेंगे। फिर वापस वो पुजारी चले गए मंदिर में और जगन्नाथ से प्रार्थना की और उन्होंने थोड़ा जगन्नाथ के चरण कमलों में अर्पण किए हुए थोड़े तुलसी दल थे और थोड़े फूल थे और वो ले आए वो, और ले आके वो उस बच्चे के तकिए के नीचे रख दिए और बच्चे को थोड़ा चरणामृत पिला दिया। बस अगले दिन ही या एक दो दिन बाद बच्चा ठीक होने लगा, और दो तीन दिन बाद वो पुजारी आज ही बताते हैं कि विश्वास करने से बाहर है, वो उस समय की बात है, 1980 के लगभग हुआ होगा। तो पुजारी कहने लगे कि आज भी आश्चर्य लगता है कि ये बच्चा कैसे अचानक ठीक हो गया, और डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए कि क्या हो गया जिसके कारण ये बच्चा अचानक ठीक हो गया। तो ऐसे भक्तों के और आसपास रहने वाले लोगों के अनुभव बहुत सारे हैं, केवल थोड़े बहुत सुना रहे हैं। अब इसमें जैसे मैंने कहा कौन कितना बढ़ा चढ़ा के कह रहा है नहीं है, लेकिन जहां तक भक्तों में ये सब सही मानते हैं उन्हीं को मैं दोहरा रहा हूं। और ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो सुने आते हैं कि जो एक 40 साल की महिला थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, तो बहुत चिंतित थी, किसी कारणवश माता पिता ने प्रयत्न किया होगा विवाह करने के लिए, नहीं हो पाया। तो उम्र बीतती गई, अब 40 साल की उम्र हो गई, वो आई मंदिर में और जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगी। उस समय मंदिर में कोई नहीं था, पुजारी था पर्दे के पीछे, वहां पे थोड़े भीतर दर्शन खुले थे, लेकिन इस महिला को पता नहीं था कि पुजारी है। पुजारी दिखाई नहीं दे रहे थे और कोई नहीं था मंदिर में। तो इस महिला ने थोड़े जोर से पूछा, जगन्नाथ मेरी शादी कभी होगी कि नहीं होगी, कब होगी मेरी शादी बताओ। तो पुजारी ने सुन लिया, तो पुजारी ने अंदर से ही उसको सांत्वना देने के लिए कहा, होगी शादी होगी, कोई चिंता नहीं करना। उसको पता नहीं था कि पुजारी बोल रहा है, ये सोचा अंदर से आवाज आया तो अवश्य होगा, बड़े पुजारी बोल रहे हो, लेकिन होगा। और वास्तव में हो गया ऐसे। थोड़े दिनों बाद अच्छा कोई वर मिल गया, उसका विवाह हो गया, वो अच्छी सुखी है। भक्त लोग कहते हैं कि अभी वो सुखी है, जहां भी अपने परिवार में है और भगवान की भक्ति भी करती है। अब एक वहां द्वारपाल चौकीदार रखे गए थे, आज भी जिनका नाम था उस समय प्रहलाद, अभी तक वो है या नहीं पता नहीं वहां पे। तो उसके कई अनुभव है। तो एक बार हुआ ये कि बलराम जयंती का महोत्सव मनाया गया था, और बलराम जी को अर्पण किया हुआ भोग, फिर जब प्रसाद बना तो बलराम जी का महाप्रसाद सबको बांटा जा रहा था। तो पुजारी ने भी एक मटके में, छोटे से मटके में, ये चौकीदार को जिसका नाम था प्रहलाद, उसको बलराम जी का महाप्रसाद दिया। अब वो प्रहलाद ने सोचा कि मैं अभी थोड़ा थक गया हूं, क्योंकि उस समय सारे उत्सव में इत्यादि इतनी भागदौड़ हुई थी, वो थक गए थे, रात को भी ठीक से नींद नहीं हुई थी। सोचा मैं रख देता हूँ, थोड़ा विश्राम करके फिर मैं खा लेता हूँ, फिर मैं सेवन करता हूँ प्रसाद का। तो फिर ऐसे करने लगे। फिर नींद में, उस समय क्या हुआ, जबकि वो नींद की झपकी आ गई थी उसे, तो एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने वो सारा महाप्रसाद खा लिया। अब कुत्ते का भला तो हो गया, परंतु इसके हाथ से अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ कि जगन्नाथ का महाप्रसाद, बलदेव का महाप्रसाद मिला था और उसने नहीं लिया। तो उसने सोचा, अरे देखा, जाग के देखा, अरे महाप्रसाद तो किसी जानवर ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया। अब मैंने तो सम्मानित नहीं किया इस प्रसाद को, तो अब जगन्नाथ कुछ करने वाले हैं। उसे इतना पता था कि जगन्नाथ कुछ करने वाले हैं, अब क्या करेंगे वो पता नहीं था। तो खैर वो बड़ा संकोच कर रहे थे कि अरे रे क्या हो गया। फिर वो घर चले गए। फिर अगले रात उनकी सेवा थी, रात का पहरा देना। तो आप तो जानते हैं चौकीदार लोग रात के पहरे में सो ही जाते हैं ना। तो रात को आए वो और थोड़ी घंटे सेवा किया, फिर रात को 1 बज गया, फिर थकावट हो गई, फिर से सो गए वहीं पे मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। और जब सोए थे तो स्वप्न में इस बार जगन्नाथ आए। जब जगन्नाथ के प्रति अपराध होता है तो बलदेव आते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। इस बार बलदेव के प्रति ऊपर अपराध हुआ था, तो अभी जगन्नाथ स्वप्न में आए प्रहलाद के, और उसको फिर से वैसे ही किया। क्या 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 किया, छाती पर बैठ गए, गला पकड़ा, थप्पड़ मारने लगे, तुमने मेरे भाई के महाप्रसाद का अपमान किया, तुमने नहीं लिया, मुझे गलती क्षमा कर दीजिए, मुझे मैं थक गया था, ये वो, छोटा सा काम, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा अपराध है ये, तुमको दंड मिलना ही चाहिए, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हारा, नहीं 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 मृत्यु दंड नहीं देना मुझे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इस तरह से आपस में दोनों के बीच में हो रहा, नहीं तुम्हें दंड दूंगा, नहीं 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 क्षमा कर, नहीं नहीं दूंगा, ऐसे करके दोनों के बीच में संवाद हो रहा था। उधर सुभद्रा देवी आ गई, सुभद्रा देवी का हृदय थोड़ा कोमल था, वो बोलने लगा, अरे क्या कर रहे हो बलदेव, बड़े भैया क्या कर रहे हो, बेचारे ने भक्त है, कुछ छोटी गलती कर दी, इतना बड़ा थोड़ी पाप है ये, नहीं मेरे बड़े भाई का जन्मदिन के ऊपर महाप्रसाद का सेवन नहीं करना, उसका अपमान करना बहुत बड़ा अपराध है, इसको दंड मिलके ही रहेगा, मृत्यु दंड दूंगा मैं उसको। सुभद्रा देवी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं 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 छोड़ दो उसको। फिर सुभद्रा देवी ने बलदेव से कहा, बड़े भाई जगन्नाथ से कहा, नहीं क्षमा कीजिए बलदेव से, ये करने वाले जगन्नाथ थे, तो बलदेव से कहा कि बलदेव आप जरा रोको बड़े भाई को, तो जगन्नाथ के बलदेव केवल हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और ये सब स्वप्न में प्रहलाद देख रहा है। फिर आके सुभद्रा देवी और भी चिंतित होने लगी, फिर अपने फिर भाई जगन्नाथ के हाथ लेकर आई, आओ जल्दी आओ बलदेव, आप आओ, और बलदेव को जगन्नाथ के पास लेकर आई। फिर बलदेव ने जगन्नाथ को रोका और उनको उसके शरीर से फिर अलग से अलग कर दिया, और फिर उस समय जब जागे तो प्रहलाद बताने लगे कि फिर बलदेव और जगन्नाथ ने मुझे 10 आदेश दिए। तो वो 10 आदेश कौन से थे, उनमें से 5 वो कहने लगे ऐसे मेरे लिए व्यक्तिगत आदेश थे जो मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे वो व्यक्तिगत जीवन के संबंध में है, तो वो 5 में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बाकी 5 आदेश उन्होंने मुझे दिए वो इस प्रकार से है। पहला था कि इस स्थान से जो भी कुछ तुम्हें मिलेगा, केवल अभी जो महाप्रसाद मिला केवल वो नहीं, थोड़ी धूल भी मिलेगी, थोड़ा बीज भी मिलेगा, उसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। यहां से जो भी कुछ आएगा वो दिव्य है, इसको साधारण नहीं समझना, और तुम ये नहीं सोचना कि ये बीज है, ये मैं स्वीकार करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसका मैं देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा आदेश ये था कि यहां मंदिर के प्रांगण में जितने भी हमारे यहां स्थान है, वह ना बाहर के संगीत को किसी को बजाने देना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता था कि बहुत पर्यटक ये वो सब लोग आते थे, अपना रेडियो वगैरह लेकर आते थे, उस जमाने में रेडियो लेकर जाते थे और संगीत सिनेमा के गाने वगैरह बजा के लेके आते थे, इधर उधर ले जाते थे, और कभी कभी कोई पास शादियां होती थी, हो सकता है वो लोग चाहते थे कि बजाए ऐसे कुछ, बोले यहाँ पे ऐसे कोई संगीत बजना नहीं चाहिए, और यहाँ पे कोई ताश आदि नहीं खेलना चाहिए। लोग आके कभी कभी मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं, ताश खेलते हैं, ये सब नहीं छोड़ना चाहिए, न किसी को यहाँ कोई नशीली पदार्थ को उसका सेवन करना चाहिए, और यदि कोई करे तो सख्ती से उनको बलपूर्वक रोकना चाहिए। इसका मतलब है, हो सकता है कि कभी कभी पहले से लोग आते थे, कभी यहां वहां कुछ करते थे, तो वो चौकीदार था, तो चौकीदार को कहा कि इसके बारे में तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तीसरा आदेश देना दिया व्यक्तिगत, उसे कहा प्रहलाद तुम कभी भी नशापान नहीं करोगे और कभी भी व्यभिचार नहीं करोगे, परस्त्री संग नहीं करोगे। चौथा आदेश उनको दिया कि जब किसी भी स्त्री को देखोगे तो उसे अपनी माँ या अपनी बहन समझ के करना, और मंदिर के प्रांगण में किसी ने भी किसी स्त्री के प्रति कोई गलत आंखें उठाई या गलत व्यवहार किया, तुरंत बलपूर्वक रोकना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। और पांचवा आदेश यह था कि यदि कोई यहां से कोई भी चीज चोरी करना चाहे, भले वो छोटी सी चीज भी क्यों ना हो, चाहे पत्थर भी क्यों ना हो, ये संगमरमर मार्बल हो या कुछ ऐसे हो, ले जाना चाहे लकड़ी हो, तुरंत उसे रोक देना चाहिए बलपूर्वक। यहां से किसी को भी कोई भी चीज ले जाने के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आदेश दिए उस व्यक्ति को, प्रहलाद को, जो अभी इस समय शायद भक्त बन गया था। तो ऐसे इसके जीवन में यह हुआ, बलदेव जी के महाप्रसाद का तिरस्कार करने के कारण। परंतु देखिए कैसी कृपा हुई उनके ऊपर, भगवान जगन्नाथ और बलदेव की, सुभद्रा देवी की भी। तो इसी प्रहलाद के बारे में भी और एक बार वो ऐसे बताते हैं कि पुराने समय जब 40-50 साल पहले, तो वहां बहुत सांप वगैरह आया करते थे जमीन के ऊपर, जंगली इलाका था वहां पे। तो रात को पहरा देते समय थोड़ा खतरा था ना, चौकीदार रात को वहां बैठेगा, कहां से सांप आ जाएगा, खतरा है। तो उसने क्या किया कि आम के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, ताकि सांप का खतरा ना हो और दिखाई भी पड़े, कोई चोर वोर आए तो दिख पड़ेगा, तो मैं अपनी सेवा भी कर पाऊंगा और सांप का खतरा भी नहीं रहेगा। तो अचानक रात के समय उन्होंने देखा कि एक ऐसे बहुत ही सज्जन व्यक्ति जैसे कोई आ रहे हैं अंदर अंधकार में, और बहुत ही अच्छे स्पष्ट साफ कपड़े पहने हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं उसने, और उसके सुंदर काले बाल हैं अच्छी तरह से पीछे किए हुए, बालों में जो बहुत सुगंधित तेल डाला हुआ है, तो तेल का सुगंध भी वो आ रहा था ऊपर, ऐसा सुगंध आ रहा था उस व्यक्ति से, आधुनिक काल के जो परफ्यूम वगैरह होते हैं वैसे नहीं, सेंट वगैरह नहीं, बहुत ही एक विशेष सुगंध आ रहा था। और जिस तरह से व्यक्ति चल रहा था कि ऐसे सज्जन व्यक्ति बीच रात में यह मंदिर में क्यों आ रहा है, तो सोच रहा था कि कौन हो सकता है, ये तो चोर तो नहीं लग रहा है। तो देखने लग गए वो। फिर शीघ्र ही मंदिर की ओर से जोर जोर से कीर्तन की आवाज आने लगी, और बंगाल में आपने सुना होगा जो महिलाएं हैं वो मंदिर में आके आवाज करते हैं, आपने सुना होगा। तो ऐसी आवाज भी सुनाई दी और कीर्तन की आवाज सुनाई दी। तो सोच रहे थे क्या हो गया, कहा अभी मंदिर में रात को कीर्तन कौन करने आ रहा है, सब मंदिर बंद है, सब कुछ बंद है। तब वो भक्त को बता रहे थे कि हो सकता है कि व्यक्ति देवता था, वो आया था यहाँ कीर्तन करने के लिए, नहीं तो ऐसे वस्त्र पहन के ऐसा दिव्य सुगंध वगैरह कहां से आएगा, रात को कीर्तन कौन करेगा ऐसे। तो वो भी अपने अनुभव बता रहा था। और एक लीला ऐसे है जो वहां के उस समय के पुजारी बताते हैं। ओढ़न षष्ठी के समय आपको पता है ये ऐसे उत्सव होता है जगन्नाथपुरी में, जब ठंडी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ऊपर कोई कंबल लगाया जाता है ठंडी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वैसे तो जगन्नाथपुरी में इतनी ठंडी नहीं होती है, फिर भी ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है, हल्का सा कुछ रहता है जाड़े के मौसम में, तो कंबल दे देते हैं, इसे ओढ़न षष्ठी कहते हैं। तो ओढ़ लेते हैं उनको, षष्ठी की तिथि पर होता है इसलिए ये ओढ़न षष्ठी षष्ठी कहते हैं उसको। अब यहां पर ऐसे कंबल वगैरह नहीं देते थे, शुरुआत के दिन थे, आजकल तो सब करते हैं, परंतु जब पहले पहले जब संस्था के हाथ में आई तो ओढ़न षष्ठी आदि सब नहीं पालन करते थे, नहीं भगवान को कंबल देते थे। तो पुजारी ने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को सुलाया और वो अपने कमरे में चले गए। वो रात को सोते समय फिर जगन्नाथ बलदेव उनके स्वप्न में आए, स्वप्न में आके कहने लगे, वो दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे कि वो सोए हुए हैं, जमीन पर सोए हुए हैं, ऐसे स्वप्न में पुजारी देख रहे थे, और वो बोल रहे हैं अरे तुम आराम से यहां कंबल ओढ़ के सोए हुए हो और हमें ठंडी में छोड़ के आ गए, हम ऐसे ठंडी में पड़े हैं यहां और हमारी कोई परवाह ही नहीं है। तो फिर एकदम जाग गए पुजारी और तुरंत जाके कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था करके फिर उस दिन से भगवान को कंबल ओढ़ने की भी प्रथा शुरू हो गई। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हिचकिचाते नहीं है अपने मन की बात बोलने के लिए, किसी चीज की कमी है तो बोल देते हैं, शर्माते नहीं है बोलने के लिए कि अरे क्या है ये क्यों नहीं दिया मुझे इत्यादि। तो एक बार ये हुआ कि जो पुजारी थे वहां के उनको बुखार आ गया, तो उन्होंने सुबह की सेवा तो कर ली, लेकिन जब दोपहर की सेवा हो गई वो बहुत थक गए थे और सर दर्द कर रहा था, बुखार था, बिल्कुल शरीर इस दशा में नहीं था कि वो सेवा को जारी रखें। किसी न किसी तरह से भगवान को सुलाया। दोपहर के 1 बजे भगवान सो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे दर्शन फिर से खुलते हैं, 4 बजे के थोड़े पहले उनको जगाते हैं भगवान को। तो हर समय वो ऐसा करते थे और कभी कभी क्योंकि वो बहुत सुबह जल्दी उठते थे, रात को लेट हो जाता था, सोने के लिए देर हो जाती थी, तो दोपहर के समय वो पुजारी सोया करते थे कभी। और वहां के जो चौकीदार थे वो आके पुजारी को हमेशा जगाते थे कि चलो भगवान को जगाने का समय हो गया है तो उठो, तो वो उठ के स्नान आदि करके तैयार हो जाते थे भगवान को जगाने के लिए। तो इस बार उनको बुखार हो गया था, उन्होंने सोचा कि आज मैं थोड़ी भगवान को जगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उस दशा में नहीं हूं भगवान को जगाने के लिए, बहुत बुखार है, सर दर्द है, नहीं हो पाएगा। तो उसने चौकीदार से उसको जाके कहा आज मुझे जगाना नहीं, मुझे मैं बीमार हूं, मैं आज भगवान को जगा नहीं पाऊंगा। तो जाके सो गए। तो नींद में भगवान जगन्नाथ आए स्वप्न में, अरे इतने बीमार तुम थोड़ी हो, प्रसाद लिया ना आज का, आ लिया तो प्रसाद लेने के लिए इतने बीमार नहीं, बीमारी नहीं है तो मेरी सेवा करने के लिए क्या समस्या है। तो तुमने स्नान भी किया ना आज सुबह, हाँ तो स्नान किया, प्रसाद लिया, तो मेरी सेवा करने में क्या समस्या है, इतना सा बुखार है, सर दर्द है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सेवा लेना चाहता हूं, आओ। और ठीक उसी समय फिर थोड़ी देर बाद चौकीदार ठक 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 ठक, चलो जागो, चौकीदार भूल गया कि पुजारी ने ऐसे बहुत बोला था कि जगाना नहीं। फिर वो पुजारी समझ गए कि हर तरह से इशारा आ रहा है कि शायद मुझे उठना ही पड़ेगा, तो उठे और फिर गए। और भगवान ने फिर उनसे स्वप्न में कहा था कि मैं तुम्हारी ही सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा क्यों, कि तुम ठीक से सेवा करते हो, वो जो दूसरे पुजारी है ना वो मुझे पिन से चुभाते हैं मेरे शरीर को। तो फिर जब वो जाके जगाने गए भगवान को, फिर देखा जहां कपड़ों को डालने के लिए पिन लगाया जाता था तो पिन से कहीं भगवान का शरीर चुभ गया, तो वहां उन्होंने एक खून का डब्बा देखा। वैसे तो विग्रह से खून नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वहां पुजारी को दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की कि बहुत सावधान रहना चाहिए। तो खास करके जो हमारे पुजारी भक्त होते हैं, जो भी भगवान के श्रृंगार की सेवा करते हैं, माताएं हों, प्रभु जी हों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, जो भी हों, हमें भगवान के श्रृंगार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके पिन से। पिन का इस्तेमाल न करें तो सबसे अच्छा है, और करना भी है, यदि अनिवार्य है कहीं, तो बहुत सावधानी से करना चाहिए ताकि भगवान के दिव्य शरीर को कभी ये चुभे नहीं। तो इस तरह से भगवान ने ये संदेश दिया, बताया कि क्या समस्या है। तो जो भगवान की अच्छी तरह से सेवा करते हैं भगवान उनकी सेवा लेना चाहते हैं, जबरदस्ती भगवान लेते हैं, जैसे इस पुजारी के साथ में किया था। तो इसी पुजारी के साथ और एक बार ऐसे ही हुआ कि लंबी मोतियों की माला थी, तो उन्होंने भगवान को पहना दी मोतियों की माला। ऐसे कई सारे मोतियों की माला थी, तो एक के बाद एक वो पहनाने लगे, 1, 2, 3 मालाएं ऐसे पहना दी। फिर चौथी माला पहनाने जा रहे थे तो माला गिर गई, फिर से पहनाया, फिर से गिर गई। फिर अचानक भगवान कह रहे, अरे मुझे नहीं चाहिए ना, क्यों दे रहे हो बार बार? तो उसके मन में ही ये ऐसे वाणी आए कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए तो गिर रहे, समझ नहीं पा रहे हो क्या, बार बार क्यों डालते जा रहे हो, मैं तीन ही चाहता हूं माला बस, और नहीं चाहता हूं। इस तरह से भगवान जगन्नाथ ने अपने पुजारी को आदेश दिया। कह रहे से एक लीला और है, लेकिन छोटी और लीलाएं कैसे करें? कल कल क्या है कार्यक्रम? कल का कल ठीक है, कल नहीं, आज ही समाप्त कर लेते हैं। और 10 मिनट बैठे, 9 बजे के बाद, ठीक है, 10-15 मिनट में जो भी कथाएं आज समाप्त कर लेते हैं। तो पहली बार जब गिरिराज शिला आई गोवर्धन से, किसी भक्त ने लाए, तो गिरिराज शिला की सेवा भी करनी थी, तो उनको भी ऑल्टर पे वहां सिंहासन पे रखा था। तो सबके लिए एक ही थाली थी, जो भोग चढ़ता था भगवान को, एक ही थाली थी। तो ये चल रहा था थोड़े दिनों के लिए। फिर पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और कहे कि गिरिराज को क्यों लाए यहां पे? तो पुजराज ने पूछा, क्या बात है? अरे सब कुछ खा जाते हैं, जैसे ही थाली रख के पुजारी चले जाता है, तुरंत लपक के वो खास करके जो मीठे सब खा लेते हैं, और हमारे लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो ऐसे हमारे लिए फिर हम तो भूखे रह जाते हैं। तो फिर पुजारी ने चर्चा की अधिकारी भक्तों से, फिर गिरिराज के लिए अलग से थाली रखी गई। फिर जगन्नाथ संतुष्ट हो कि अभी मेरा भोग उनको नहीं लेना चाहिए, मेरे लिए जो रखा है वो मेरे लिए होना चाहिए। फिर गिरिराज के लिए, गिरिराज शिला के लिए जब से अलग भोग लगने लगा, तब से वो संतुष्ट थे। फिर दोनों, गिरिराज भी संतुष्ट और जगन्नाथ भी संतुष्ट। ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सी लीलाएं हैं जिसमें विग्रह एक दूसरे के सब ले लेते हैं। ऐसे बताया जाता है कि साक्षी गोपाल पहले जगन्नाथ मंदिर में हुआ करते थे, फिर दोनों के बीच में कुछ हुआ, वो क्या हुआ वो स्पष्ट बात नहीं है, इसलिए जगन्नाथ भी नाराज हो गए और साक्षी गोपाल भी नाराज हो गए। इसलिए फिर राजा बाध्य हो गए साक्षी गोपाल को दूसरा मंदिर देने के लिए, अभी कटक के पास जो मंदिर है वहां मरवाने दिए। अभी दोनों सुखी है, दोनों सो अपने अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जो केवल भक्त ही समझ सकते हैं, भक्त ही ऐसे लीलाओं का रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो एक बार एक पुजारी थे जो जब भगवान को सुलाते समय उनको उठा रहे थे कभी किसी काम से, तो अक्सर जब वो ऐसे हाथ में पकड़ते थे तो ये जो उंगली है जिसको हम अशुद्ध मानते हैं ना, हम जप के लिए भी इस उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं, हम तो अशुद्ध माना जाता है। खास करके हम लोग जब किसी को डांटते हैं तो ऐसे ऐसे करके डांटते हैं, इस उंगली का प्रयोग करते हैं। तो किसी पवित्र कार्य के लिए इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब ये पुजारी भगवान के विग्रह को पकड़ रहे थे तो हमेशा उसकी ये दोनों उंगलियां भगवान जगन्नाथ के आंखों पर जा रही थी। तो भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न में आए कि ऐसे उंगलियां, ये उंगली मेरे आंख पर नहीं डालना, इस उंगली का स्पर्श मेरे शरीर से नहीं करना, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरी सेवा में। तो सतर्क हो गए और फिर से उन्होंने ये करना बंद कर दिया, सावधान रहे। परंतु आदत से मजबूर थे ना, धीरे धीरे जल्दी में यहां वहां कुछ करते करते फिर से वो शुरू हो गया उंगली वैसे डालना। फिर से जगन्नाथ आए, आखिरी बार कह रहा हूं मैं क्यों उंगली लगा रहे हो, वो उंगली क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? तब से वो पुजारी बहुत घबरा गए, सोचा नहीं नहीं और नहीं करेंगे ऐसे। तो एक बार वहां पास में एक दूध वाला रहता था, ग्वाल घोष आदि बहुत रहते हैं वहां पे। तो एक बार वो आके मंदिर के जो गार्ड थे, चौकीदार, शायद वो प्रहलादी थे, वो उसके साथ बात कर रहे थे। बातों बातें हम बोल रहे थे, क्या बहुत नुकसान हो रहा है मेरे व्यवसाय में आजकल, ये क्या नुकसान हो रहा है? बोले जितना भी मैं दूध लेता हूं बाजार में ले जाता हूं वो खराब हो जा रहा है, इसलिए फिर मैं बेच नहीं पा रहा हूं। कितने दिन हो गए ऐसे ही चल रहा है और सारा मेरा दूध खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। और यही व्यक्ति है जो भगवान के लिए भी दूध लाता था। तो चौकीदार ने तुरंत पूछा, जगन्नाथ भगवान को जो दूध देते हो उसमें पानी मिलाते हो क्या? तो जवाब नहीं दिया। बोलो सच सच बोलो, पानी मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? तो सर नीचे करे, हाँ मिलाता हूँ, अभी हमारा व्यवसाय ही ऐसा है, पानी मिलाते हैं हम, सब लोग मिलाते हैं, हम भी मिलाते हैं। हाँ तो तुम कल से ठीक ठाक करो, भगवान को शुद्ध दूध दो, पानी भगवान के लिए कम से कम मिलाना नहीं, नहीं तो तुम्हारा कितना और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर अगले दिन से वो शुद्ध दूध भगवान के लिए लाने लगा और फिर आगे चल के उसका व्यवसाय भी ठीक ठाक चलने लगा। वहां वो दूध मिलाता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम यहां तो दूध मिलाना बंद कर दिया, जगन्नाथ को शुद्ध दूध देने लगा। एक बार और एक पुजारी का अनुभव ऐसे है कि जब वो भगवान के रसोई करने के लिए गए, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए जा रहे थे राजभोग, तो देखा कि सब कुछ है वहां सामग्री, परंतु नारियल नहीं है। और जगन्नाथ के भोग में नारियल का बहुत महत्व होता है, हर बार नारियल की आवश्यकता तो होती है। अरे नारियल नहीं है यहाँ, अब कहाँ से लाऊं? अब वहां बाजार में जाके लाने के लिए भी उतना समय नहीं है, और कौन अभी पेड़ पे चढ़ना, क्या करना, कहाँ से लाना। तो बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, नारियल अभी यहाँ नहीं उपलब्ध है हमारे पास, कोई कल जो पुजारी कर रहे तो हो सकता है वो भूल गए लाने के लिए या जो भी कुछ हुआ। और जैसे ही वो ऐसे बैठ रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, जगन्नाथ भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, ठीक उस समय कोई दर्शनार्थी आए दर्शन करने के लिए और पुजारी को 3 नारियल दे दिए। बोले ठीक है, ठीक उसी समय वो आके नारियल दे दिए, बहुत खुशी से नारियल का दान स्वीकार किया और फिर राजभोग तैयार कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं, थोड़े ही हमने सुनाए, चुन चुन के सुनाए, थोड़े ऐसे हो सकता है छोटी छोटी चीजें हैं इसलिए हमने नहीं सुनाए। अब बचे हुए थोड़े 5-10 मिनट में मैं और एक मंदिर की कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, जो श्रीरामपुर में है, बंगाल में महेश नाम के गांव में है। तो इसके बारे में, ये लीला जो है इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में बताते हैं, एक तात्पर्य में 11वां अध्याय भी अभी हम पढ़ के आए वहां से, 11वें अध्याय का 29वां श्लोक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। संक्षेप में उन्होंने इस जगन्नाथ मंदिर का वर्णन किया है कि एक भक्त थे भगवान कृष्ण जगन्नाथ के, जिनका नाम था ध्रुवानंद। तो ये जगन्नाथपुरी में जाके अपने हाथों से बना हुआ जो प्रसाद भोग है वो भगवान जगन्नाथ को अर्पण करना चाहते थे, परंतु जगन्नाथ मंदिर पुरी का नियम है कि मंदिर के अंदर ही जो रसोई घर है वहीं पे भोग बनता है, बाहर की कोई वस्तु अर्पण नहीं किए जाते, पके हुए चीजें केवल जो भगवान के रसोई घर में बनता है केवल वही मात्र वहां अर्पण किया जाएगा। वैसे हमारे मंदिर में भी, हर एक मंदिर में ऐसे होता है, केवल विशेष दिनों में, जैसे जब कोई बड़ा उत्सव होता है, रथ यात्रा का उत्सव होता है, जन्माष्टमी आदि होता है, गोवर्धन पूजा आदि, उस समय भक्त लोग भी अपने अपने घरों से बना के ले आते हैं, जो दीक्षित भक्त हैं इत्यादि। परंतु साधारण तौर से तो केवल मंदिर में ही बनना चाहिए भोग, तो जगन्नाथ मंदिर में तो ये नियम बहुत ही सख्त है। तो फिर जब वो भक्त गए भोग लेकर कि मैंने घर में बनाया है, वास्तव में बहुत ही भक्ति भाव से बनाया था, तो पुजारियों ने कहा कि नहीं, बाहर की कोई वस्तु हम अर्पण नहीं कर सकते। तो वो निराश हो गए, निराश होकर सोच रहे थे क्या करें, फिर जगन्नाथ भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करना, तुम चले जाना वापस ऐसे स्थान में जहां श्रीरामपुर के पास में एक गांव है महेश, तुम वहां जाओ जो गंगा के तट पे है। तुम जब गंगा में जाओगे वहां तुम्हें मेरे हमारे तीन विग्रह मिलेंगे, चार विग्रह, सुदर्शन भी, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन, ये विग्रह मिलेंगे, तुम उनको ले आओ और उनकी वहां स्थापना करके उनकी सेवा करो, फिर जी भर के उनके लिए हमारे लिए तुम भोजन बनाओ और हम खुशी से स्वीकार करेंगे, हम खाएंगे, तुम जो भी पकाओगे हमारे लिए हम अवश्य खाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं, जब वो सेवा करना चाहते हैं और किसी कारणवश सेवा नहीं कर पाते हैं तो भगवान जगन्नाथ उनके लिए कोई ना कोई सेवा की व्यवस्था कर ही देते हैं। जैसे कल हम जगदीश गांगुली की चर्चा कर रहे थे, जिनके पीछे राजपुर में जगन्नाथ पधारे वहां पे वास्तव में, तो फिर वहां पे वास्तव में वैसे ही हुआ और फिर एक छोटी सी कुटिया बनाई ध्रुवानंद ने और वहां सेवा करना शुरू कर दिया। अब काफी समय बीत गया और ध्रुवानंद वृद्ध हो गए, अब पहले जैसे सेवा नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर वो जगन्नाथ से कहने लगे कि आपकी सेवा के भविष्य के बारे में मुझे चिंता है, मैं अब कितने दिन रहूंगा मुझे पता नहीं, और अब जीवित भी हूं तो उतनी सेवा नहीं कर पा रहा हूं जैसे कि पहले मैं किया करता था, तो अब क्या उपाय है आप बताइए। फिर भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए और उन्होंने ध्रुवानंद से कहा कि अगले दिन जो पहले व्यक्ति तुमको मिलेगा उसी व्यक्ति को तुम ये जिम्मेदारी दे दो मेरी सेवा की, और वो आगे चल के मेरी सेवा करेगा। तो फिर अगले दिन जब वो उठे बाहर गए तो पहले व्यक्ति जो मिले उनका नाम था कमलाकर पिप्पलाई। ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे बताया जाता है कि ये कमलाकर पिप्पलाई जो है ये द्वादश गोपालों में से एक हैं, तीसरे गोपाल हैं और उनका नाम है महाबल। आपको पता है कि कृष्ण लीला में जो भक्त हैं वो गौर लीला में भी प्रकट होते हैं, और गौर गणोदेश दीपिका में ये बताया गया है कि ये कमलाकर पिप्पलाई वास्तव में महाबल है कृष्ण लीला में। तो वो भी भगवान के महा एक पार्षद हैं। तो फिर उन्होंने जब सुनी बात ध्रुवानंद की, वो भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सेवा स्वीकार की, और उस दिन से इस जगन्नाथ मंदिर में कमलाकर पिप्पलाई के जो वंशज हैं उनकी सेवा प्रारंभ हो गई। कमलाकर पिप्पलाई, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, उनके पुत्र का नाम था चतुर्भुज। चतुर्भुज के दो पुत्र थे नारायण और जगन्नाथ। नारायण के पुत्र थे जगदानंद, जगदानंद के पुत्र थे राजीव लोचन। तो राजीव लोचन के सेवा के समय आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो गई और बहुत कठिनाई हो रही थी भगवान की सेवा करने के लिए। तो उस समय जो मुसलमान नवाब थे वहां पे, उन्होंने बहुत सारी जमीन का दान उस मंदिर को दिया ताकि भगवान की सेवा के लिए कोई कठिनाई न हो। तो इस तरह से उनके जो वंशज हैं उनको अधिकारी कहा गया। अधिकारी अर्थात उनका अधिकार है भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए। तो कई पीढ़ियों तक वो अभी सेवा वहीं से चलती आ रही है, आज भी शायद वो चल रही, मैं गया नहीं हूं उस स्थान में, लेकिन मैंने सुना है कि आज भी उस मंदिर में सेवा चल रही है उसी वंशावली में। वहां एक विशेष बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु उसी दिन पर मनाया जाता है परंतु एक विशेष बात यहां ये है कि जगन्नाथ का रथ जो है वो तब तक हिलता नहीं है, जब तक खींचा नहीं जाता, जब तक कि जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ हिलता नहीं है। वैसे देखिए हमारे मंदिरों में नियम की बहुत नियम का ख्याल, समय का ख्याल रखा जाता है कि ठीक इसी समय पे भोग चढ़ना चाहिए, ठीक बिल्कुल इसी समय पे आरती होनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए। परंतु जगन्नाथ मंदिर में कभी कभी ऐसे नहीं होता है, भगवान जगन्नाथ की इच्छा से सब कुछ चलता है। कभी कभी मंदिर में जब सुबह सुबह मंदिर नहीं खुलता है, जगन्नाथ नहीं चाहते हैं, रथ यात्रा के समय भी भगवान जगन्नाथ कभी कभी रुक जाते हैं, हिलते नहीं है, दो दिन तक वहीं खड़े रहते हैं। कभी कभी एक बार जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर सीधे बिना रुके हुए भी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ की लीलाएं हैं। तो ऐसे निर्धारित नहीं रहता है कि किस समय पे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ का रथ चलने के लिए शुरू हो जाएगा। तो जब वहां रथ शुरू होता है तभी यहां के रथ को खींचना शुरू करते हैं। तो अब हम ये पूछेंगे, ठीक है भाई, आजकल तो मोबाइल फोन वगैरह है, तो वहां से मोबाइल फोन से कोई व्यक्ति बता सकता है चलो जगन्नाथ का रथ चल रहा है, अभी आप खींच सकते हैं। लेकिन उस समय तो कोई मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे ना, तो फिर वहां महेश में लोगों को कैसे पता चलता था कि अभी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का रथ प्रारंभ हो चुका है। तो नीलकंठ नाम का एक पक्षी है, तो जब वो नीलकंठ पक्षी आके जगन्नाथ रथ के ऊपर बैठते हैं तब इनको पता चलता है कि वहां जगन्नाथ का रथ हिल गया है, चल रहा है, तभी यहां वो रथ खींचना शुरू करते थे। आज भी वो प्रथा मोबाइल फोन के जमाने में और अशुद्धता के जमाने में अभी तक ये प्रथा चल रही है कि नहीं पता नहीं, परंतु पहले ऐसे हुआ करता था, आज भी शायद होता होगा। ऐसे जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। नीलकंठ का नाम का पक्षी आके बैठता है, फिर भगवान जगन्नाथ चलते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर है श्रीरामपुर में, महेश नाम के गांव में। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान बहुत कृपालु हैं, जगह जगह ऐसे प्रकट हो जाते हैं। और आज हमारे न जाने कितने इस्कॉन मंदिरों में भी जगन्नाथ भगवान इधर उधर विराजमान है, और हमें हमारे संस्था के अतिरिक्त भी जो उड़िया लोग हैं वो भी जगह जगह जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करते हैं। तो जगह जगह पर ऐसे सुंदर लीलाओं के बारे में सुनने में आता है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय।